दानियल की पुस्तक संख्या 62 होगा।
विलियम मिलर की भी विषय सूचक दृष्टि के रत्नों का अनावरण, महान प्रकाश से एडवेंटवाद के विचलन का आलोचनात्मक परीक्षण और सच्ची नींवों की ओर लौटने का आह्वान।
विलियम मिलर के स्वप्न के रत्न मिलराइटियों के इतिहास में जितना चमके थे उससे 10 गुना अधिक तेज चमकेंगे। अपने इतिहास के दौरान जिस ज्ञान में वृद्धि हुई थी उसके बारे में मिलराइटों की समझ सही थी परंतु अपूर्ण थी। जब उनकी उस समझ को अधिक सटीक ऐतिहासिक संदर्भ में रखा जाता है तो ये अधिक गंभीर निहितार्थों की ओर संकेत करती है, क्योंकि वो न केवल रत्नों द्वारा दर्शाई गई भविष्यद्वाणी संबंधी सच्चाइयों का विस्तार करती है बल्कि अंतिम दिनों की 10 कुवारियों के लिए परीक्षा भी प्रस्तुत करती है। मिलराइटों की ये समझ दो प्रवर्तक चार्टों 1843 और 1850 पर प्रस्तुत है। दोनों चार्ट हबक्कूक के दूसरे अध्याय में जिन पट्टिकाओं के बारे में भविष्यद्वाणी की गई थी उनकी पूर्ति थे, और ये तथ्य कि वे चार्ट हबक्कूक की पूर्ति थे तथा ये भी कि वही सच्चाइयां एडवेंटवाद की आधारभूत सच्चाइयां थीं, इन दोनों बातों को भविष्यद्वाणी की आत्मा ने इसी रूप में चिन्हित किया था।
तेहराला समचौर अक्टूबर 865 की महान निराशा के बाद जब मिलराइट्स को स्वर्गीय पवित्र स्थान और पवित्र स्थान से संबंधित सत्यों की समझ में मार्गदर्शन मिला तब कुछ आधारभूत सत्यों की समझ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, किंतु 856 में एडवेंटवाद का लाओदिकियाए अवस्था में प्रवेश करना और 863 में 7 समय को अंततः अस्वीकार कर देना उन्हें लाओदिकिया की मरुभूमि में ले गया। 850 के दशक से एडवेंटवाद के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सत्य प्रकट नहीं हुआ है। यदि आपको इस दावे पर संदेह है तो बताइए कि ये गलत क्यों है।
मिलरवादी दानियेल के दूसरे अध्याय की समझ में सही थे पर उनकी समझ सीमित थी। एडवेंटवाद कभी मिलरवादियों की समझ से आगे नहीं बढ़ा। आज दानियेल के दूसरे अध्याय में दर्शाए गए सभी 8 राज्य देखे जा सकते हैं और दानियेल द्वारा नबूकदनेस्सर के स्वप्न का भेद समझने के लिए की गई प्रार्थना का प्रतीकवाद भी देखा जा सकता है। वो भेद अंतिम भविष्य सूचक भेद का प्रतिनिधित्व करता है। सभी नबी अंतिम दिनों की पहचान कर रहे हैं और उसी अंतिम भविष्य सूचक भेद को यूहन्ना यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य के रूप में पहचानता है। जब समय निकट है तब ठीक अनुग्रह का काल बंद होने से पहले वो भेद खोला जाता है, और अब वो भेद उन लोगों के लिए खोला जा रहा है जो देखना चुनते हैं। दानियेल की पुस्तक का द डेली के बारे में मिलराइट समझ को प्रेरणा द्वारा सही ठहराया गया था, परंतु 1901 तक एडवेंटिज्म ने उस बुनियादी सत्य को अस्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, और 1930 के दशक तक एडवेंटिज्म पुराने प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण पर वापस लौट चुका था जो ये दावा करता है कि द डेली मसीह की पवित्र स्थान सेवा के किसी पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। भविष्यद्वाणी की आत्मा कहती है कि वो शैतानी दृष्टिकोण स्वर्ग से निकाले गए स्वर्गदूतों से आया था। आज द डेली के बारे में सही मिलराइट दृष्टि को न केवल पैगनवाद के प्रतीक के रूप में बल्कि उस एडवेंटिज्म के विद्रोह के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है जो सत्य से प्रेम न करने वालों पर प्रबल भ्रम लाता है।
मिलराइट्स का मार्ग नैरहोनो दर्शन 2300 वर्षों की समाप्ति की सही तिथि तक किया गया, और महान निराशा के तुरंत बाद एडवेंटिज्म ने उस भविष्यवाणी से संबंधित अधिक प्रकाश को पहचाना, परंतु 1856 से 1863 तक 7 काल को अस्वीकार कर देने के साथ और आज तक भी उन्हें उस सिद्धांत से कोई प्रगतिशील प्रकाश नहीं मिला जिसे वे अपना केंद्रीय स्तंभ और नींव बताते हैं। आज 7 काल को जो देखने को तैयार है उनके द्वारा 2300 वर्ष की भविष्यवाणी के प्रत्येक कालखंड के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देखा जा सकता है।
पहले 49 वर्ष उस चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें भूमि हर 7वें वर्ष विश्राम करती है, और ये चक्र 7 बार दोहराया जाता है। 490 वर्ष न केवल प्राचीन इज़राइल के लिए एक परीक्षा काल का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि भूमि को विश्राम देने की आज्ञा के विरुद्ध कितने वर्षों तक विद्रोह चलता रहा, ताकि कुल 70 वर्षों का वो समय संचित हो जाए जब भूमि को विश्राम करने से रोका गया था जो उसी विद्रोह के लिए बंदीवास का काल था।
वो सप्ताह जिसमें मसीह ने वाचा की पुष्टि की, क्रूस तक 3.5 वर्ष और क्रूस के बाद 3.5 वर्ष में विभाजित है। उसी सप्ताह में मसीह सब लोगों को एकत्र कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें ऊपर उठाया जाए तो वे सब लोगों को एकत्र करेंगे।
अब इस संसार का न्याय हो रहा है, अब इस संसार के शासक को बाहर निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊं तो सब मनुष्यों को अपनी ओर खींच लूंगा। यूहन्ना 12:33।
वे 2520 दिन जिनमें मसीह ने वाचा की पुष्टि की और मनुष्यों को अपने पास इकट्ठा किया, उन 2520 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं जब परमेश्वर ने अपनी वाचा के विवाद के कारण अपने विद्रोही लोगों को तितर बितर कर दिया। इसराइल के उत्तरी राज्य के विरुद्ध लागू किए गए 7 समय ने उन 2520 वर्षों के तितर बितर होने का प्रतिनिधित्व किया, जो 733 ईसा पूर्व में शुरू होकर 1798 में समाप्त हुए। वर्ष 5 इन 5 इन दो अवधियों को विभाजित करता है और 1260 वर्षों की दो क्रमिक अवधियां बनाता है। पहली अवधि मूर्ति पूजकता द्वारा पवित्र स्थान और सेना के रौंदे जाने का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी अवधि पोपवाद द्वारा किए गए रौंदे जाने का।
दक्षिणी राज्य के विरुद्ध 7 काल अर्थात 2520 वर्षों की अवधि, जो 657 ईसा पूर्व में आरंभ हुई और 1844 में समाप्त हुई, 22 अक्टूबर 1844 को समाप्त हुई। ये वाचा के श्राप का प्रतीक है और इसका समापन उस जुबली की तुरही के बजने से होता है जिसे प्रायश्चित दिवस पर फूंका जाना था। 22 अक्टूबर 1844 को आरंभ हुआ प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित दिवस एक समयावधि का प्रतिनिधित्व करता है। ये अन्वेषणात्मक न्याय की अवधि है और उसी अवधि में 7 के पवित्र चक्र से संबंधित जुबली की तुरही फूंकी जानी थी।
परंतु 7वें स्वर्गदूत की आवाज के दिनों में जब वो तुरही फूंकना आरंभ करेगा, तब परमेश्वर का भेद पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को घोषित किया था। प्रकाशित वाक्य 10:7।
7वें नरसिंगी का बजना, जो 22 अक्टूबर 1844 को शुरू हुआ, लय व्यवस्था अध्याय 25 में वर्णित 7 के पवित्र चक्र की जुबली तुरही का प्रतिनिधित्व करता है। मिलर पंथी अंततः 2300 वर्षों की भविष्यवाणी की तिथि निर्धारण में सही सिद्ध हुए और महान निराशा के तुरंत बाद एडवेंटवाद ने उसके बारे में और अधिक समझ प्राप्त की, परंतु 2300 वर्षों की अवधि का मिलर का रत्न आज 10 गुना अधिक चमक रहा है। 2300 वर्षों की अवधि के भीतर दर्शाई गई 7ों अवधियों का प्रत्येक भविष्य सूचक गुण लय व्यवस्था के अध्याय 25 और 26 में वर्णित 2520 वर्षों 7 बार से सीधे भविष्य सूचक रूप से जुड़ा हुआ है।
मिलेराइटों ने पथभ्रष्ट प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद के उस दावे को अस्वीकार कर दिया कि तेरे लोगों के लुटेरे, जिन्होंने अपने आप को ऊंचा किया और गिर पड़े, एंटियोकस एपिफेनीज का प्रतीक था और वे सही थे। वे ये सत्य जानते थे और उसका बचाव करते थे कि परमेश्वर के भविष्य सूचक वचन में तेरे लोगों के लुटेरे, जिन्होंने दर्शन स्थापित किया, के रूप में रोम ही प्रस्तुत है, न कि कोई अज्ञात और ऐतिहासिक रूप से महत्वहीन सीरियाई राजा जिसने वो दर्शन स्थापित किया।
आज एडवेंटिस्ट धर्मशास्त्री सिखाते हैं कि तेरे लोगों के लुटेरे एंटियोकस एपिफानिस है। आज वो तर्क जो मिलराइट इतिहास में ये दर्शाता था कि पूर्व वाचा के लोग, जिन्हें उपेक्षित किया जा रहा था, उस दर्शन को न तो समझते थे और न ही समझ सकते थे जो तेरे लोगों के लुटेरे की सही समझ से स्थापित होता है, वही तर्क फिर से उन्हीं पूर्ववाचा के लोगों के द्वारा दोहराया जा रहा है, जिन्हें एक बार फिर उपेक्षित किया जा रहा है।
जहां दर्शन नहीं होता, वहां लोग नाश हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य है। नीति वचन 29 पर जाना।
मिलरवादियों ने ये सही सिखाया था कि लव्य व्यवस्था 26:7 अर्थात 2520 वर्ष बाइबल की सबसे लंबी और अंतिम समय संबंधी भविष्यवाणी थी, परंतु लाओदीकियाई एडवेंटिज्म ने 1863 में उस रत्न को अस्वीकार कर दिया और आज ये जो देखना चाहते हैं उनके लिए देखा जा सकता है कि न केवल 7 समय को
बाइबल की सबसे लंबी समय भविष्यवाणी के रूप में पहचानने में मिलरवादी सही थे, बल्कि ये भी कि शाप, जो परमेश्वर का रोष है, इसराइल के उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों पर लागू था। आज उन दो कोपों के अपने अपने निष्कर्ष, जिनका उल्लेख दानियल की पुस्तक अन्य भविष्यद्वक्ताओं की भांति करती है, 46 वर्षों की एक अवधि के दो छोर, पहला और अंतिम के रूप में देखे जा सकते हैं, जिस दौरान मसीह ने मिलरवादी मंदिर की स्थापना की, जैसा कि इसका प्रतिरूप उस बात में दिखता है कि मूसा 46 दिन पहाड़ पर रहा और मरुभूमि के तंबू के निर्माण के निर्देश प्राप्त करता रहा, और हेरोदीस द्वारा मंदिर के 46 वर्षों के पुनर्निर्माण में, जिसका उल्लेख फरीशियों ने मसीही से अपनी बातचीत में किया था, जब वे इस बारे में बोल रहे थे कि वो व्यापारियों और सिक्का बदलने वालों द्वारा नष्ट किए गए मंदिर को शुद्ध करके उसे जी उठाएगा, और उसके मानव शरीर रूपी मंदिर के पुनरुत्थान द्वारा भी, जो 46 गुणसूत्रों के साथ रचा गया था। आज मिलरवादी मूलभूत सत्य पहले की तरह ही सही है, पर अब वे 10 गुण ना अधिक गहन हो गए हैं। आज जो देखने को तैयार है, उनके लिए ये देखा जा सकता है कि जब मसीह ने दानियल की पुस्तक के 8वें अध्याय की 13वीं पद में अपने आप को पालमोनी, अद्भुत गणनाकर्ता अथवा रहस्यों का गणनाकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया, तब वे उस संबंध को दिखा रहे थे जो एक ऐसे दर्शन से था जो 2300 वर्षों की अवधि का प्रतिनिधित्व करता था, और दूसरे दर्शन से था जो 2520 वर्षों की अवधि का प्रतिनिधित्व करता था। जब इन दो भविष्य सूचक अवधियों के संबंध को पहचाना जाता है, तब देखा जा सकता है कि वे पापाई शासन के 1260 वर्षों से सीधे जुड़े हैं, और ये 1260 वर्षों का काल आगे चलकर दानियल अध्याय 12 के 1290 वर्षों तथा उसी पद के 1335 वर्षों से भी संबंधित है। भविष्यवाणी की अवधियों के और भी अनेक प्रत्यक्ष संबंध है, जो दानियल 8 के पद 13 और 14 के दो दर्शनों से संबंधित है, पर उन्हें केवल वही लोग पहचानते हैं जो देखना चाहते हैं। लेकिन आज उन सभी समय अवधियों के उन संबंधों से भी आगे, जिन्हें ये दोनों दर्शन एक साथ जोड़ते हैं, पालमोनी, अद्भुत गणनाकर्ता अथवा रहस्यों का गणनाकर्ता नाम का प्रकाशन है। उन दो पदों के विषय में मिलराइट्स सही थे, पर सीमित, और आज एडवेंटिज्म बस पूर्ण और घोर अंधकार में है।
ठहरो और अचंभित हो, चिल्लाओ और पुकारो, वे मत वाले हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे लड़खड़ाते हैं परंतु मादक पेय से नहीं, क्योंकि यहोवा ने तुम पर गहरी निद्रा की आत्मा उंडेल दी है और तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं। उसने भविष्यद्वक्ताओं को और तुम्हारे सरदारों अर्थात दर्शियों को ढांप दिया है, और सबका दर्शन तुम्हारे लिए ऐसा हो गया है जैसे किसी मुहर बंद पुस्तक के वचन, जिसे लोग किसी विद्वान को देकर कहते हैं कृपा करके इसे पढ़ो, वो कहता है मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मुहर बंद है, और वो पुस्तक उस व्यक्ति को दी जाती है जो अशिक्षित है, और उससे कहा जाता है कृपा करके इसे पढ़ो, वो कहता है मैं अशिक्षित हूँ। यशाया 29:9-12।
सिस्टर वाइट बताती है कि विलियम मिलर को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के संबंध में महान प्रकाश दिया गया था, लेकिन प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12, 13, 17 और 18 के बारे में उनकी समझ, सरल शब्दों में कहें तो, सही नहीं थी। उनकी वे गलत धारणाएं दो पवित्र चार्टों पर प्रदर्शित नहीं हैं, पर प्रकाशित वाक्य के अध्याय 9 से जो प्रदर्शित है वो ये रत्न है कि इस्लाम का प्रतिनिधित्व 3 विपत्तियों द्वारा किया गया है।
उपदेशकों और जनसामान्य ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को रहस्यमय और पवित्र शास्त्रों के अन्य भागों की तुलना में कम महत्व का माना है, परंतु मैंने देखा कि ये पुस्तक वास्तव में एक ईश्वरीय प्रकाशन है जो उन लोगों के विशेष लाभ के लिए दिया गया है जो अंतिम दिनों में जीवित होंगे, ताकि उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति और अपने कर्तव्य का निर्धारण करने में मार्गदर्शन मिले। परमेश्वर ने विलियम मिलर के मन को भविष्यवाणियों की ओर उन्मुख किया और उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के निरेश में महान प्रकाश दिया। अर्ली राइटिंग्स 235।
सिस्टर व्हाइट की रचना में महान प्रकाश अभिव्यक्ति अत्यंत सूचनाप्रद है। मिलर ने प्रकाशित वाक्य की कलीसियाएं, मुहरें और तुरहिया समझा, क्योंकि पवित्र स्वर्गदूतों ने इन विषयों पर उसका मन निर्देशित किया था। मिलर को दिया गया महान प्रकाश दो पवित्र तालिकाओं पर दर्शाया गया था और जो सिद्धांतगत सत्य महान प्रकाश थे उन्हें उसके स्वप्न में रत्नों के रूप में पहचाना गया। एडवेंटिज्म को वो महान प्रकाश दिया गया और 1830 से उसने उसे नकली रत्नों से ढकना शुरू कर दिया। प्रकाश का सिद्धांत ये है कि प्रकाश वही है जिसका उपयोग मसीह किसी व्यक्ति या किसी समुदाय का न्याय करने के लिए करते हैं।
प्रकाश न केवल किसी समुदाय का न्याय करता है बल्कि उनका न्याय उस प्रकाश के आधार पर भी होता है जो उन्हें मिल सकता था यदि वे विरोध न करते, जैसा कि उन्होंने 1856 में किया। ये तो अनेक उदाहरणों में से केवल एक है। प्रकाश से जुड़ी दूसरी विशेषता ये है कि अस्वीकार किया गया प्रकाश उसी अनुपात का अंधकार उत्पन्न करता है। एडवेंटिज्म ने मिलर को परमेश्वर द्वारा दिया गया महान प्रकाश, जो एडवेंटिज्म की नींव का प्रतिनिधित्व करता है, अस्वीकार किया और उसे छिपा दिया।
जो बाहरी रूप के पार देखता है, जो सब मनुष्यों के हृदयों को पढ़ता है, वो उन लोगों के विषय में कहता है जिन्हें महान प्रकाश मिला है। वे अपनी नैतिक और आत्मिक दशा के कारण न दुखी हैं न आश्चर्यचकित। हाँ, उन्होंने अपनी ही राहें चुनी और उनकी आत्मा उनके घृणित कर्मों में प्रसन्नत होती है। मैं भी उनके भ्रम चुनूंगा और उनके भय उन पर ले आऊंगा, क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने उत्तर न दिया, जब मैंने बोला तो उन्होंने नहीं सुना, परंतु उन्होंने मेरी आंखों के सामने बुरा किया और वही चुना जो मुझे प्रसन्न नहीं करता था। परमेश्वर उन पर प्रबल भ्रम भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें, क्योंकि उन्होंने सत्य का प्रेम ग्रहण नहीं किया ताकि वे उद्धार पाएं, परंतु अधर्म में प्रसन्नता पाई। यशायाह 66:3-4, 2 थिस्सलुनीकियों 2:11-10-12।
स्वर्गीय शिक्षक ने पूछा, मन को बहकाने वाला इससे बड़ा कौन सा भ्रम हो सकता है कि आप ये दिखावा करें कि आप सही नींव पर निर्माण कर रहे हैं और कि परमेश्वर आपके कार्यों को स्वीकार करता है, जबकि वास्तव में आप बहुत सी बातें सांसारिक नीति के अनुसार कर रहे हैं और यहोवा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। ओ, ये एक बड़ा छल, एक मोहक भ्रम है जो मनों पर कब्जा कर लेता है। जब वे पुरुष जिन्होंने एक बार सत्य को जाना है, भक्ति के रूप को, उसकी आत्मा और सामर्थ्य समझ बैठते हैं, जब वे ये मान लेते हैं कि वे धनी हैं, धन संपत्ति में समृद्ध हो गए हैं और उन्हें किसी बात की आवश्यकता नहीं है, जबकि वास्तव में उन्हें हर चीज की आवश्यकता है। टेस्टिमोनीज खंड 8:239-250।
लाओदीकिया, जिसका रूप एडवेंटवाद ने 1856 में धारण कर लिया, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें कभी महान प्रकाश दिया गया था, परंतु जिनके लिए दूसरा थिस्सलुनीकियों में वर्णित प्रबल भ्रम प्राप्त करना नियत है और जो हर समय ये मानते रहते हैं कि नकली सिक्के और जवाहरात लाकर उन्होंने जो झूठी नींव डाली है वो परमेश्वर द्वारा ठहराई गई है, जबकि वस्तुतः वो रेत पर डाली गई नींव है। एडवेंटवाद एक कलीसिया है जिसे महान प्रकाश, महान प्रमाण मिला है, पर वो जूया के ऐसी कलीसिया है जिसने प्रभु का संदेश, जिसे भेजा गया था, त्याग दिया है और तब से सबसे अविवेकपूर्ण दावे और झूठी धारणाएं और झूठे सिद्धांत स्वीकार कर लिए हैं।
अपवित्र धर्मोपदेशक ईश्वर के विरुद्ध पंक्तिबद्ध हो रहे हैं। वे एक ही सांस में मसीह और असंसार के देवता की प्रशंसा कर रहे हैं। बाहरी रूप से वे मसीह को स्वीकार करते हुए भी वे बरब्बा को गले लगाते हैं और अपने कर्मों से कहते हैं, इस मनुष्य को नहीं परंतु बरब्बा को। जो भी ये पंक्तियां पढ़ते हैं सावधान रहें, शैतान ने इस बात पर घमंड किया है कि वो क्या कर सकता है। वो इस एकता को तोड़ने का विचार करता है जिसके लिए मसीह ने प्रार्थना की थी कि वो उसकी कलीसिया में बनी रहे। वो कहता है, मैं निकलूंगा और एक झूठी आत्मा बनूंगा ताकि जिन्हें मैं बहका सकूं, उन्हें धोखा दूं, आलोचना करूं, दोषी ठहराऊं और बातों को झूठ लाऊं। यदि जिस कलीसिया को महान प्रकाश मिला है, ऐसी कलीसिया जिसे बड़े प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, छल के पुत्र और झूठी गवाही देने वाले को स्थान दे, तो वो कलीसिया प्रभु द्वारा भेजा हुआ संदेश त्याग देगी और सबसे अविवेकपूर्ण दावों, झूठी धारणाओं और झूठे सिद्धांतों को स्वीकार करेगी। शैतान उनकी मूर्खता पर हंसता है क्योंकि उसे पता है कि सत्य क्या है।
बहुत से लोग हमारी उपदेश पीठों पर खड़े होंगे अपने हाथों में झूठी भविष्यवाणी की मशाल लिए हुए, जो शैतान की नरकीय मशाल से जलाई हुई होगी। यदि संदेह और अविश्वास को पाला पोसा जाए तो जो लोग ये समझते हैं कि वे बहुत जानते हैं, उनके बीच से विश्वास योग्य उपदेशकों को हटा दिया जाएगा। यदि तू जानता, मसीह ने कहा, हाँ तू भी, कम से कम इसी तेरे दिन में वे बातें जो तेरी शांति से संबंधित हैं, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। तथापि परमेश्वर की नींव दृढ़ बनी रहती है। प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके हैं। पवित्र ठहराया गया सेवक के मुंह में छल कपट न हो, वो दिन के समान खुला हो, बुराई के हर दाग से मुक्त। पवित्र सेवकाई और प्रेस इस विकृत पीढ़ी पर सत्य का प्रकाश चमकाने में सामर्थ्य होगी। प्रकाश भाइयों, हमें और प्रकाश चाहिए। सियोन में तुरहे फूंको, पवित्र पर्वत पर चेतावनी का नाद करो। प्रभु की सेना को पवित्र हृदयों के साथ इकट्ठा करो कि वे सुने कि प्रभु अपनी प्रजा से क्या कहेगा, क्योंकि जो सुनेंगे उनके लिए उसने अधिक प्रकाश रखा है। वे शस्त्रबद्ध और सुसज्जित हों और युद्ध के लिए आगे आएं, पराक्रमियों के विरुद्ध प्रभु की सहायता करने को। परमेश्वर स्वयं इज़राइल के लिए कार्य करेगा, हर झूठी जीभ चुप करा दी जाएगी। स्वर्गदूतों के हाथ उन छलपूर्ण योजनाओं को जो रची जा रही हैं उलट देंगे। शैतान के गढ़ कभी विजयी नहीं होंगे। तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के साथ विजय साथ देगी। जैसे प्रभु की सेना के प्रधान ने यरीहो की दीवारें ढा दी, वैसे ही प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले लोग विजय पाएंगे और सब विरोधी तत्व परास्त होंगे। जो परमेश्वर के दास स्वर्ग प्रेषित संदेश लेकर तुम्हारे पास आए हैं, उनके विषय में कोई आत्मा शिकायत न करे। अब उनमें दोष न खोजो, ये कहकर वे बहुत दृढ़ हैं। वे बहुत कड़े शब्दों में बोलते हैं। वे कड़े शब्दों में बोल सकते हैं, पर क्या इसकी आवश्यकता नहीं? यदि वे उसकी वाणी या उसके संदेश पर ध्यान न देंगे तो परमेश्वर सुनने वालों के कान झंझना देगा। जो लोग परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, उन्हें वो धिक्कारेगा। शैतान ने हर संभव व्यवस्था कर दी है कि हमारे बीच एक प्रजा के रूप में ऐसा कुछ भी ना आए जो हमें ताड़ना दे, फटकारे और हमारी भूलों को छोड़ देने के लिए प्रेरित करे। परंतु एक ऐसी प्रजा है जो परमेश्वर का संदूक वहन करेगी। हमारे बीच से कुछ लोग बाहर चले जाएंगे जो अब संदूक को नहीं उठाएंगे, परंतु ये सत्य को रोकने के लिए दीवारें खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंत तक आगे और ऊपर बढ़ता रहेगा। बीते समय में परमेश्वर ने जनों को उठाया है और अब भी उसके पास अवसर के ऐसे पुरुष हैं जो उसकी आज्ञा पूरी करने के लिए प्रतीक्षारत और तैयार हैं। ऐसे पुरुष जो उन प्रतिबंधों के आर पार निकल जाएंगे जो केवल कच्चे गारे से पुती दीवारें मात्र हैं। जब परमेश्वर अपना आत्मा मनुष्यों पर रखता है, वे कार्य करेंगे। वे प्रभु का वचन घोषित करेंगे। वे अपनी आवाज़ तुरही के समान ऊंची उठाएंगे। सत्य उनके हाथों में न तो घटेगा न अपनी शक्ति खोएगा। वे लोगों को उनके अपराध दिखाएंगे और याकूब के घराने को उनके पाप। सेवकों के लिए गवाहियां 4:9-6।
द डेली के शैतानी प्रतीक को मसीह का प्रतीक मानना एक ही सांस में मसीह और इस संसार के देवता की स्तुति करने के समान है। जबकि मुख से वे मसीह को स्वीकार करते हैं, वे बरब्बा को अपनाते हैं और अपने कर्मों से कहते हैं, यह मनुष्य नहीं परंतु बरब्बा। मेलर के स्वप्न में रत्न के रूप में प्रस्तुत और दो पवित्र पट्टिकाओं पर चित्रात्मक रूप से दर्शाए गए वे सत्य महान प्रकाश है जो मिलर को दिया गया था और जिसे एडवेंटवाद ने अस्वीकार कर दिया है। वे दावा करते हैं कि वे शैतानी प्रतीक का उपयोग करके मसीह की स्तुति कर रहे हैं और ये भी दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की नेव पर खड़े हैं, जबकि वो एक नकली नेव है जो उस दोषपूर्ण सिद्धांतिक ढांचे को अपना आधार बनाने वाले सभी को प्रबल भ्रम में डाल देती है। सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है और आधुनिक इसराइल बस प्राचीन इसराइल के भविष्य सूचक पदचिन्हों पर चल रहा है।
एक बात मेरी आत्मा पर बोझ बनी हुई है, परमेश्वर के प्रेम की बड़ी कमी, जो प्रकाश और सत्य का लगातार विरोध करने के कारण और उन लोगों के प्रभाव के कारण खो गई है
जो सक्रिय कार्य में लगे रहे हैं, जिन्होंने प्रमाण पर प्रमाण के सामने होते हुए भी परमेश्वर द्वारा भेजे गए संदेश के कार्य का प्रतिकार करने के लिए प्रभाव डाला है। मैं उन्हें यहूदी राष्ट्र की ओर इंगित करता हूँ और पूछता हूँ, क्या हमें अपने भाइयों को उसी अंध विरोध के मार्ग पर अनुग्रह काल के बिल्कुल अंत तक चलते रहने के लिए छोड़ देना चाहिए? यदि कभी किसी लोगों को सच्चे और विश्वास योग्य पहरेदारों की आवश्यकता रही है, जो चुप न रहें, जो दिन रात पुकारें और परमेश्वर की दी हुई चेतावनियां सुनाएं, तो वो सातवें दिन के एडवेंटिस्ट हैं। जिन लोगों ने बड़ा प्रकाश और धन्य अवसर पाए हैं, जो कफरनहूम के समान विशेषाधिकार के विषय में स्वर्ग तक ऊँचे उठाए गए हैं, क्या वे उन्नति न करने के कारण दिए गए प्रकाश की महानता के अनुरूप अंधकार में छोड़ दिए जाएंगे?
मैं हमारे उन भाइयों से विनती करता हूँ जो जनरल कॉन्फ्रेंस में एकत्र होंगे कि वे लाओदिकिया वालों को दिया गया संदेश माने। उनकी अंधता की कैसी दशा है, ये विषय बार बार आपके ध्यान में लाया गया है, परंतु आपकी आत्मिक दशा के प्रति असंतोष इतना गहरा और पीड़ादायक नहीं रहा कि सुधार हो सके। तू कहता है, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी चीज की कमी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, दैनई, कंगाल, अंधा और नंगा है। आत्म धोखे का दोष हमारी कलीसियाओं पर है। बहुतों का धार्मिक जीवन एक झूठ है। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस में खंड 16, खंजक तेशे कतेशेक सौ।
कफरनहूम वो नगर था जिसे यीशु ने अपने नगर के रूप में चुना था।
कफरनहूम में यीशु अपने आने जाने की यात्राओं के बीच बीच के समय में रहा करते थे और उसे उनका अपना नगर कहा जाने लगा। ये गलील की झील के तट पर और संदर गेन्नेसरेट के मैदान की सीमाओं के निकट था, यदि वास्तव में उसी मैदान पर ना भी रहा हो। युगों की अभिलाषा 252।
मसीह ने कफरनहूम को चुना जैसे उसने पूर्वकाल में यरूशलेम को चुना था।
और मैं उसके पुत्र को एक गोत्र दूंगा ताकि मेरा दास दाऊद के लिए यरूशलेम में, उस नगर में जिसे मैंने अपने लिए चुना है कि वहां अपना नाम रखूं, मेरे सम्मुख सदैव एक दीपक बना रहे। एक राजा 11:55।
1844 में मसीह ने एडवेंटिज्म को अपनी नगरी के रूप में चुना और 1837 तक एडवेंटिज्म ने जेरिको नामक शहर का पुनर्निर्माण कर लिया था, जो लाओदिकियन आराम और समृद्धि का प्रतीक था। जैसा प्राचीन इसराइल के साथ हुआ, वैसा ही आधुनिक इसराइल के साथ भी। एडवेंटिज्म मानता है कि वे परमेश्वर की विशेष नगरी के नागरिक हैं, परंतु उन्होंने उस महान ज्योति को अस्वीकार कर दिया है जो नागरिकता का प्रमाण प्रदान करती है। एली, होफनी और फिनिहास के समय के शिलों की तरह एडवेंटिज्म का न्याय उसी महान ज्योति के अनुसार किया जाएगा जिसे ग्रहण करने का उन्हें अवसर दिया गया था।
जो अपने आप को परमेश्वर की संतान बताते हैं, उनके बीच कितनी कम धीरज दिखाई गई है, कितने कटु वचन बोले गए हैं, और जो हमारे विश्वास के नहीं हैं, उनके विरुद्ध कितनी भर्त्सना की गई है। बहुतों ने अन्य कलीसियाओं के लोगों को बड़े पापी समझा था, जबकि प्रभु उन्हें इस प्रकार नहीं मानता। जो लोग अन्य कलीसियाओं के सदस्यों को इस दृष्टि से देखते हैं, उन्हें परमेश्वर के पराक्रमी हाथ के नीचे अपने आप को दीन करना चाहिए। जिन्हें वे दोषी ठहराते हैं, उन्हें शायद बहुत ही थोड़ा प्रकाश, कम अवसर और विशेषाधिकार मिले हों। यदि उन्हें वो प्रकाश मिला होता जो हमारी कलीसियाओं के बहुत से सदस्यों को मिला है, तो वे कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ते और संसार के सामने अपने विश्वास का उत्तम प्रतिनिधित्व करते। जो अपने प्रकाश का घमंड करते हैं और फिर भी उसमें चलते नहीं, उनके विषय में मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन सूर और सीदोन की दशा तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, जिन्हें बड़ी ज्योति मिली है, जो विशेष अधिकार की दृष्टि से स्वर्ग तक ऊंचा उठाया गया है, अधोलोक में उतारा जाएगा, क्योंकि यदि तेरे बीच जो सामर्थ्य के काम किए गए हैं वे सदोम में किए गए होते, तो वो आज तक बना रहता। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन सदोम देश की दशा तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी। उसी समय यीशु ने उत्तर दिया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने ये बातें ज्ञानियों और समझदारों अपनी ही दृष्टि में से छिपाईं और इन्हें बालकों पर प्रकट किया।
और अब क्योंकि तुमने ये सब काम किए हैं, प्रभु कहते हैं, मैं सुबह सुबह उठकर तुमसे बोलता रहा पर तुमने नहीं सुना, और मैंने तुम्हें पुकारा पर तुमने उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं इस घर के साथ वैसा ही करूँगा जो मेरे नाम से कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और उस स्थान के साथ भी जिसे मैंने तुम्हें और तुम्हारे पितरों को दिया, जैसा मैंने शिलो के साथ किया था। और मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से बाहर कर दूंगा, जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों, यहाँ तक कि इफ्राम की पूरी संतान को निकाल दिया है।
प्रभु ने हमारे बीच अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की हैं, और उन्हें वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए जैसे संसार की संस्थाएं चलाई जाती हैं, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उन्हें केवल उसकी महिमा पर दृष्टि लगाए हुए इस प्रकार संचालित किया जाना चाहिए कि हर संभव उपाय से नाशमान आत्माएं उद्धार पाएं। परमेश्वर की प्रजा को आत्मा की गवाहियां मिली हैं, फिर भी बहुतों ने ताड़ना, चेतावनियों और परामर्शों पर ध्यान नहीं दिया है। अब ये सुनो, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, जिनकी आंखें हैं पर देखते नहीं, जिनके कान हैं पर सुनते नहीं, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? प्रभु की ये वाणी है, क्या मेरी उपस्थिति से तुम ना कांपोगे? मैंने समुद्र की सीमा के लिए रेत को सदा के नियम से ठहराया है कि वो उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी तरंगे उछले तो भी वे प्रबल नहीं हो सकती, चाहे वे गर्जें तो भी वे उसे पार नहीं कर सकती। परंतु इस प्रजा का हृदय हठधर्मी और विद्रोही है, वे बगावत करके दूर चले गए हैं। वे अपने मन में ये नहीं कहते, अब हम अपने परमेश्वर प्रभु का भय माने, जो अपने समय पर पहली और पिछली दोनों वर्षाएं देता है। वो हमारे लिए कटनी के नियत सप्ताह सुरक्षित रखता है। तुम्हारी अधर्मताओं ने इन बातों को तुमसे दूर कर दिया है, और तुम्हारे पापों ने तुम्हारे लिए अच्छी वस्तुएं रोके रखी हैं। वे अनाथ के मुकदमे का न्याय नहीं करते तो भी वे समृद्ध होते हैं, और दरिद्र के अधिकार का वे न्याय नहीं करते, क्या मैं इन बातों के लिए दंड न दूं? प्रभु की ये वाणी है, क्या ऐसी जाति पर मेरी आत्मा प्रतिशोध न लेगी?
क्या प्रभु को ये कहने के लिए विवश होना पड़ेगा, इस लोगों के लिए तू प्रार्थना न कर, न उनके लिए पुकार या प्रार्थना उठा, न मेरे सामने उनके लिए मध्यस्थता कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। अथ वर्षा की फुहारें रोक दी गई हैं और अंतिम वर्षा नहीं हुई, क्या तू अब से मुझे पुकार करना कहेगा? मेरे पिता, तू मेरी युवावस्था का मार्गदर्शक है। रिव्यू एंड हेरल्ड, 8 अगस्त 1893।
हम अगले लेख में उस महान प्रकाश पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में विलियम मिलर को दिया गया था।
जब मसीह सच्चे धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करने और उन सिद्धांतों को उच्च उठाने के लिए जो मनुष्यों के हृदयों और कर्मों पर शासन करे संसार में आए, तब असत्य ने उन पर, जिन्हें इतना महान प्रकाश मिला था, इतना गहरा अधिकार कर लिया था कि वे अब उस प्रकाश को समझ ही नहीं पाते थे, और सत्य के लिए परंपरा छोड़ देने की उनमें कोई इच्छा न थी। उन्होंने स्वर्गीय शिक्षक को अस्वीकार किया, महिमा के प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया ताकि वे अपनी ही रीतियों और उद्भावनाओं को बनाए रख सकें। वही भावना आज संसार में प्रकट है। लोग सत्य की खोजबीन करने से कतराते हैं, कहीं उनकी परंपराएं विचलित न हो जाएं और चीज़ों की नई व्यवस्था न आ जाए। मानवता में त्रुटि करने की निरंतर प्रवृत्ति बनी रहती है, और मनुष्य स्वभावतः मानवीय विचारों और ज्ञान को अत्यधिक ऊंचा उठाने की ओर झुकते हैं, जबकि दिव्य और शाश्वत न तो पहचाने जाते हैं न ही उनका मूल्य आंका जाता है। शब्द स्कूल कार्य पर परामर्श 47